بسم الله الرحمن الرحيم. کہاں سے شروع کریں؟ پچھلے سفر میں جب میں حاضر ہوا تھا بیان ختم ہو گیا، اذان ہو گئی، اور اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے، دیکھا کہ مسجد میں، اس وقت تو شاید مسجد نہیں تھی، تو میں نے آوازیں سنی کہ مسجد میں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے اس وقت ایک حدیث سنائی تھی کہ سب وضو کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ وضو حشر میں ایسے موقع پر کام دے گا کہ وہاں کی ہولناکیوں اور مصیبتوں سے بھاگ کر ہر ایک پناہ ڈھونڈتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی، یاد ہے میں نے یہ حدیث سنائی، رأیت رجلا من امتی، کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہر تمام انبیاء کے گروپس ہیں، ہر ایک کے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، فطورید اسے یا نہیں آ سکتے۔ کتنی اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ جہاں کہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف گروپس جو تشریف فرما ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان کے پاس جاتا ہے تو وہ فطوری دے، اس کو بگا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ عمل اللہ عز و جل اسے شکل صورت عطا فرمائیں گے، کہتے ہیں وہ آئے گا اور اپنا تعارف کرائے گا کہ تو نے دنیا میں نمازوں کے لیے، تیاری کے لیے جو وضو کیا تھا، میں وہ وضو ہوں، ہاتھ پکڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لا کر چھوڑ دے گا۔ تو مجھے بھی ابھی یہاں پہنچ کر وضو کی حاجت تھی، اس لیے اور تھوڑی دیر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کام کے لیے آپ جمع ہیں اس کام میں برکت دے، اس کام کو قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے خلف شار اور فتنوں سے اس کام کو، کام والوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا عجیب و غریب روحانی نظام ہے مالک کا کہ کاندھلے کا یہ خاندان حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی نور اللہ مرقدہ ہو، جو اس کے بانی مبانی ہیں، وہ اپنی مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں مقیم ہیں، اور وہ مسجد میوات سے آنے والے، شہر میں داخل ہونے والے انسانوں کے لیے گزرگاہ پر یہ مسجد واقع تھی۔ تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب گزرنے والوں کی منت سماجت کر کے انہیں مسجد میں لاتے، पूछते कि कहाँ जा रहे हो तो बता दें कि मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो फरमाए वो जरा धम दे देंगे, यहाँ वजू सीख लो, नमाज सीख लो। इस तरह इस काम को हजरत ने शुरू फरमाया। जब इंतकाल हुआ तो जिन लोगों की के लिए हजरत ने ये कुर्बानी की थी तो वो आप पर इतने फिदा थे कि इंतकाल के बाद नमाज जनाजा एक दफ़े पढ़ी गई, दो दफ़े पढ़ी गई, तीन दफ़े पढ़ी गई, अब जनाजा उठता ही नहीं। कहते हैं कि गिन नहीं सकते इतनी मर्तबा, फौज की फौज आ रही है मेवात से और नमाज पढ़ रही है, कौन रोक सकता है। तो एक बुजुर्ग को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारत हुई, वो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जल्दी दफन करो, मुझे शर्म आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से मेरे इंतज़ार में तशरीफ़ फरमाए खड़े हैं, मेरे इंतज़ार में, जल्दी मुझे दफन कर दो, तब जाकर लोगों को इग्नोर करके जल्दी से हज़रत मौलाना इस्माइल साहब को दफन किया गया। क्या मुकाम होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर में। तो आगे फिर ये मीरास मुंतकिल हुई ये दौलत कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खिलकतन कमज़ोर और ज़ुबान भी चलती नहीं थी तलाकत के साथ। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही नवरल्लाहु मरकदहु ने अपने यहाँ अपने घर के बच्चे की तरह हज़रत को रखा हुआ था, हज़रत मौलाना मोहम्मद यहिया साहब की वजह से कि उनके भाई हैं। तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहाँ मस्जिद की दीवार के साथ एक छोटी सी गली थी, तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही नवरल्लाहु मरकदहु के कल्ब मुबारक की इस कदर तवज्जो कि अभी बचपन और जवानी के दरमियान की उम्र है और उस वक्त से आप पर यह हाल तारी है कि उस गली में जाकर उकड़ू बैठ जाते हैं, वहाँ हज़रत आबिद पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने यहाँ ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए मुझे मदरसे में ब्रेडफोर्ड बुलाते थे, तो वहाँ स्टेज पर मैंने बैठ कर दिखाया कि उकड़ू, इस तरह मुफ्ती महमूद साहब ने हमें बैठ कर दिखाया कि इस तरह बैठते थे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, और घुटनों पर सर रखा हुआ है, आँखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं, तो रोना सिखाया। क्यों सिखाया रोना? एक दफ़े खुद ये रोना भी सीखा होगा, जब भी तो रुला रहे हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही नवरल्लाहु मरकदहु हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, अब मामूलात जारी हैं। मामूलात की अदायगी के मुतालिक हज़रत हाजी साहब से हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पूछा करते थे, तो एक दफ़े शिकवा किया कि हज़रत मेरा दिल बहुत सख्त हो गया, रोना आता ही नहीं, फिर क्या था? हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजिर मक्की नबरल्लाहु मरकज़हु की बरकत से रोते रहे रोते रहे, यहाँ तक के एक अरसे के बाद फिर हाजिर खिदमत हुई। हाजी साहब की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, हजरत अब तो ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा, पसलियां टूट रही हैं। तो अब हजरत ने तवज्जो फरमाई होगी तो रोना मौकूफ। कुरान करीम में दोनों के दरमियान मुवाजना किया गया, फलयधकू कलीला वलयबकू कसीरा। हजरत शेख को दिस रू के यहाँ कोई खादिम अभी नया नया पहुँचता तो हजरत उसे फरमाते कि देखो मेरे यहाँ फिक्रे बहुत चले, जो मेरे फिक्रों को गौर से सुनकर उस पर अमल करता है वो कामयाब होता है। तो कभी मेरे फिक्रों का बुरा न मनाना। तो हजरत भी हमें खुद्दाम पार्टी को कभी फरमाते मेरे यारो तुम तो हर वक्त तफरी में रहो। तो हजरत को फरहत खुशी इम्बिसाल हंसते खिलते ये पसंद नहीं आते होंगे, उसको हजरत फरमाते मेरे यारों तुम तो हर वक्त तफरी में रहो और हम चोर फौरन पकड़ा जाता था, हर वक्त हम तो दिल से और ज़ुबान से भी पढ़ते रहते थे, हजरत की खिदमत में हाजिर होते तो दुआ करते रहते थे अल्लाहुम्मस्तूर अवराती व आमीन रवाती, ये खुदा हमारे करतूत हजरत पर आया हो जाएंगे मुनकशिब हो जाएंगे तो हमें यहाँ से मार कर भगा देंगे। तो हम सत्तारी मांगते थे अल्लाहुम्मस्तूर अवराती व आमीन रवाती। तो ऐसे जो हमारे दिल के तसव्वुरात हजरत के सामने होते थे हम कहाँ हैं, तो ऐसे मौके पर हजरत पढ़ा करते थे तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना न तुम खाली न हम खाली। वही भगाया कहते वो डंडा मारने के बजाय इससे बड़ा डंडा क्या हो सकता है, चलो बस हो चुका मिलना। तो तसव्वुरात में भी पकड़े जाते थे कि हजरत के कल्ब की तरफ हर वक्त दरवाज़ा खुला है या नहीं है। क्या शान थी हमारे अकाबिर नवर अल्लाह मराकदहुम की। तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को हजरत रोना ये जो कैसे सीखा, अपने पीर व मुर्शिद हजरत गंगोही नबर अल्लाह मरकदहू से सीखा। उन्होंने किन से सीखा, ये भी हर चीज़ की चैन है। उन्होंने सीखा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। पहले अर्ज़ करते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, दिल बहुत सख्त हो गया, रोना नहीं आता। फिर तवज्जो हुई होगी तो हाल ऐसा हो गया कि अब फिर जाकर अर्ज़ करते हैं कि हजरत अब तो पसलियाँ टूटती हैं, बर्दाश्त नहीं होता, तो रोना मौकूफ़ हो गया। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो फिर इसके तालिब हुए कि हजरत अब तो फिर वही हाल हो गया पहले वाला। तो फरमाया कि फिर पसलियाँ टूटेगी तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हर ज़माने में हर वक्त उम्मत महमदिया के लिए रिजाल कार पैदा किए जिन्होंने कुर्बानियाँ की उम्मत के लिए की तरबियत में मशगूल रहे, लेकिन जिन हमारे अकाबिर को हमने देखा वो कोई और ही चीज़ थी हमारे अकाबिर नबरल्ला बराफ़द हर चीज़ में मुमताज़, क्या इत्तेबाए सुन्नत। तो ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल इब्तिदा है, अभी आगे चल रहे हैं चलते चलते मैं सारी सवाने तो नहीं सुना सकता। हजरत हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच कर हज़रत ने इरादा फरमा लिया दिल में कि अब यहाँ से हिंदुस्तान वापस जाना नहीं है, यहीं रहेंगे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, क्यों कि जैसे मंजूर नज़र थे इनके अब्बा हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो इसी तरह हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत फ़ौरन शेर पढ़ते कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत है, वहाँ पर गम से कब खाली, तो इस तरह वहाँ भी जो दोस्त मदीना मनवरा में हाजिर हैं अभी और हज के बाद कुछ हाजिर होंगे, तो वहाँ भी आईने की तरह जो कोई पहुँचता है, चाहे करोड़ों एक साथ पहुँच जाए, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर को अता फरमाई है कि हर एक की क्या तलब है, कि किस हाल में है, सबको देख रहे हैं, तरबियत फरमा रहे हैं। इसीलिए हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही नवरल्ला मरकद हो एक मरतबा हमारे यहाँ इंग्लैंड पहुँचे, तो हज़रत ने फरमाया कि यहाँ मुझे हज़रत शेख कुद्दुसी लोगों ने भेजा और इरशाद फरमाया कि मुफ्ती जी बरतानिया जाओ और मेरी आँखों से यूसुफ़ का दारुल देख कर आओ, मेरी आँखों से। कि हज़रत शेख कुद्दुसी लोग की नज़रों में कैसा दारुल हज़रत चाहते हैं, किसे नापसंद करते हैं, इस नज़रिए से उसको देख कर आओ। और हज़रत की हर चीज़ पर नज़र रहती है हज़रत शेख कुद्दुसी रूह की। जब मैं सबसे पहले इंग्लैंड रवाना हुआ तो इधर फरागत हुई शाबान में, बल्कि 26 रजब को आखिरी दरसे बुखारी हुआ, 26 रजब को हमारी बुखारी शरीफ ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद फिर इंग्लैंड का के सफ़र की तैयारी और दरमियान में लंबी कहानी है, हज़रत ने मुझे हुक्म से भेज दिया कि अपने वालिद के साथ रहो, ये रमज़ान वहाँ गुजार। मैं बहुत रोया धोया बहुत कि मेरा पता नहीं इंग्लैंड जाने के बाद कब आना हो, हज़रत फरमाया नहीं। तो फिर मैं ईद के बाद फिर हज़रत की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ था और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल 11 रबीउल अव्वल को वहाँ से निकले और 12 को मैं इंग्लैंड पहुँचा था 12 रबीउल अव्वल। 1968 में। तो हजरत शेख नबरल्लाह मरकदऊ हर चीज पर नजर रखते थे। मैं वहां पहुंचा और वहाँ प्रेस्टन में था, वहाँ होल्डन से के साथ ही अभी यहाँ भी आए हुए हैं हनीफ भाई अमला, वो जकरिया मस्जिद उस वक्त नहीं थी, एक मकान में नमाज पढ़ा करते थे, टू अप टू डाउन छोटा सा मकान। उसके बाद एक चर्च की इमारत खरीदी गई, तो उन्होंने सुना होगा कि कोई मौलवी पारे होकर आया है, तो प्रेस्टन आकर मुझसे मिले। उन्होंने अपने यहाँ मुझे टेस्ट के लिए बुलाया, आज के जुमे की नमाज पढ़ा हो, हम पास हो गए अपने टेस्ट में। फिर उन्होंने वहाँ मुलाजमत पर रख लिया। तो मुझे साथ ही कहने लगे कि यहाँ क्योंकि वो नई नई इमारत ख़रीदी गई थी, मकान से इधर मुंतकिल हुए थे, कहने लगे कि यहाँ फजर और ईशा में कोई मुसल्ली नहीं होगा, सिर्फ वीकेंड में हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है तो नमाजी होंगे, तो आप तीन नमाजों में आया करें, बाकी नमाजों में ईशा और फजर में ना आए कि कहीं ईशा 11:30 बजे देर से होती है, कोई तकलीफ़ हो रास्ते में, फजर की नमाज जल्दी होती है 4 बजे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आऊँगा, अजान दूँगा। तो अरसे तक ऐसा हुआ कि कभी कोई नहीं होता था ईशा में, मैं अकेले पढ़कर चला जाता था। जैसे मैंने वहाँ किस्सा सुनाया था अभी कल परसों कि हज़रत के खुद्दाम में एक सूफ़ी इनाम थे, बहुत भोले भाले सूफ़ी इनाम, तो शहीद हो गए, दूसरे हज़रत के खादिम थे, बहुत भोले भाले। तो वो सूफ़ी 7 दिन में से 6 दिन हज़रत की खिदमत में शाम को हाज़िर होते और 1 दिन खिदमत में तो हाज़िर होते थे मगर ईशा की नमाज के काफ़ी बाद पहुँचते। तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ तबलीगी इज्तिमा होता है, इसलिए मैं इज्तिमा के बाद आता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि हर चीज़ रोशन हज़रत के सामने। तो एक दिन वो ईशा की नमाज से पहले पहुंच गए, तो हज़रत ने उनसे पूछा कि सूफी आज जल्दी आ गए? तो इज्तिमा तुम्हारा तबलीगी इज्तिमा? तो कहने लगे कि मैं वहाँ से होकर आया। तो फिर हज़रत ने मज़ीद तफसील पूछी कि वहाँ इज्तिमा में कितने लोग थे? तो बोले आज तो कोई नहीं आया, मैं अकेला ही था। तो फिर कितना रोशन हज़रत कहलवाना चाहते थे? कहते हैं फिर तो सूफी बेचारा कहता है मैंने अकेले ने इज्तिमा कर लिया। तो इसी तरह मैंने हज़रत को लिखा कि हज़रत यहाँ ईशा की नमाज में कोई नहीं होता, फजर में कोई नहीं होता, ईशा की नमाज में यूनुस भाई थे वो शुरू हुए थे, फजर में अय्यूब भाई चौहान बरहुन तरकेसर के वो शुरू हुए थे। तो फिर मैं कोई 4-5-7 हफ्ते ही में भाग गए, मदरसे से भाग जाते हैं, حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام پر فائز کیا گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. میں نے تو پڑھا تھا اسی نیت سے کہ آگے علمی اشتغال رہے گا عمر بھر کے لیے. میں تو خوش تھا. اب یہ اہتمام اور انتظام کہ کس مخمصے میں مجھے پھنسا دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چپکے سے بغیر کسی کو کہے اور پوچھے میں بھاگ گیا. کسی کو مولانا عبدالسلیم صاحب, حضرت مدنی, کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اور میں سیدھا گنگو پہنچ گیا حضرت تھانوی قدس روح کی خدمت میں. کتنے ان حضرات نے سمجھا گیا شاید طبیعت ناساز ہوگی اس لیے مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں. پھر گھر والوں نے بتایا ہوگا کہ وہ جو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب, حضرت مولانا اعزاز علی صاحب, حضرت مدنی قدس روح, یہ قافلہ گنگو پہنچ گیا. اور انہوں نے جا کر وہاں حضرت تھانوی قدس روح سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو کسی کو لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. میں کس کو لینے کے لیے؟ میں کہ ایک چور ہمارے یہاں سے بھاگ کر آیا. حضرت قاری طیب صاحب نے یہی جملہ اپنے لیے لکھا کہ ایک چور بھاگ کر آیا ہے, اس کو لینے کے لیے آیا ہے. تو حضرت تھانوی نے پوچھا کیسا چور, کون, کیا بات؟ تو پھر انہوں نے وضاحت کی. تو پھر حضرت تھانوی قدس روح نے طلب فرمایا حضرت قاری محمد طیب صاحب کو. تو پھر یہ حضرات اصرار فرماتے رہے, وہ انکار فرماتے رہے, بالخصوص حضرت تھانوی قدس روح کے اصرار اور حکم پر جانا پڑا. آج کل تو جھگڑے ہی ہوتے ہیں سب ان مناسب کے لیے کہ مجھے, میں تو بخاری شریف پڑھانے والا, مجھے نحوی کیوں دے دی. مناسب کے جھگڑے. تو حضرت قاری محمد طیب صاحب بھی جب تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ مجھے پھر بھی انشراح نہیں تھا باوجود حضرت کے اس حکم کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ دریچے کھلے ہوئے ہیں وہاں, جیسے حضرت شیخ قدس روح کے کتب خانے میں کوئی پہنچے تو بے تکلف بھی تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے یہاں دو کھڑکیاں ہیں, ایک کھڑکی یہ رائے پور کی طرف کھلتی ہے, یہ مدینہ شریف کی طرف کھلتی ہے. کیا مقام تھا. اسی لیے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کہنے پر جو حضرت شیخ قدس روح کے حالات نظم میں تحریر فرمائے وصف شیخ فارسی میں, گفت یوسف, کہ یوسف نے کہا کہ میرے شیخ کے حالات نظم میں لکھ دو, تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ کتاب. اور حضرت مفتی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی شرح فرمائی ساری زندگی حضرت کی. تو اس میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہیچ نقل و حرکت کہ حضرت مفتی شیخ نور اللہ مرقدہ کا یہاں سے وہاں منتقل ہونا کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کبھی نہیں ہوا. تو میں یہاں गोल्डन पहुँच कर फंस गया कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ फंस गया। तो एक अभी आए हुए मुझे चंद हफ्ते हुए थे कि अक्टूबर में एक जमात तब्लीगी बड़ौदा के इज्तिमा में जा रही थी, तो मैंने ड्राइवर से, मैं गुलाम हुसैन से राव रसम पैदा की, दोस्ती कर ली। मैंने कहा कि इन लोगों ने आपको क्या पेश किया कि खराजात की मद में, टिकट की मद में? तो उन्होंने कहा 70 पाउंड। तो मैंने 70 पाउंड पेश कर दिए। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी भाग गया वहाँ से। अब हमारी बस 12 सीटर बस थी, बड़ी तेज़ तेज़ जा रही है। गालिबन तीसरे या चौथे दिन हम इस्तांबुल में थे, फिर बेल्जियम पहुँचे। तो बेल्जियम यानी, मैं कभी हमारे तलबा से कहा करता था कि देखिए दस्तरखान पढ़ते हो, तो मैंने कहा कि ये जितनी चीज़ें यहाँ हैं दस्तरखान पर, दस्तरखान, ये प्लेट्स, ग्लास, चावल, अचार, पापड़, किसी चीज़ का नाम लो तो मैं उस पर हज़रत शेख जैसे लोगों का एक किस्सा तो मैं सुना सकता हूँ। तब ये बेल्जियम, तो ये हसना किस्सा नाम आ गया तो मुझे मौलाना लुत्फुर रहमान साहब बांग्लादेश के याद आए कि वो रूम अपनी जमात लेकर पहुँचे और वो अमीर थे वहाँ। बेल्जियम से उन्हें दाखिल होना था, जिस तरह फेरी में हम गए थे, पूरी बस फेरी में चली गई और उसी में हम बैठे रहे, बेल्जियम उतर गए, तो उसी फेरी से गालिबन उन्हें आना था। तो बेल्जियम में ब्रिटिश सिफारत खाने पर या बॉर्डर पर वो पहुँचे होंगे, तो उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा, और कहते 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तालीम जारी है, साथी दुआ में मसरूफ हैं, तालीम कर रहे हैं। तो फरमाते हैं, उन्होंने ख़ुद मुझे सुनाया कि कहते हैं मैं तो सबके बीच में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हज़रत शेख खुद इसी रूह तशरीफ़ लाए और फरमाया क्या बात है? तो कहने लगे साथियों का वीज़ा नहीं हो रहा, परेशान है सब। तो हज़रत ने फरमाया कि अभी थोड़ी देर में आपको वीज़ा जारी हो जाएगा, फिक्र मत न करो। तो कहते हैं जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने साथियों को बशारत सुनाई कि अभी हज़रत शेख तशरीफ लाए और ये खुशखबरी कि अभी वीज़ा तुम्हें मिलने वाला है। चुनाचे बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि चंद मिनट नहीं गुजरे कि वो अफसर आया, उसने पासपोर्ट दिए कि जाओ। कैसी तवज्जो कि कौन जमात कहाँ है, किस हाल में है, और आगे चलिए इस सफ़र में। बेल्जियम से मैंने अर्ज़ किया कि हम तीसरे चौथी रात को वहाँ इस्तांबुल पहुँचे, तो इस्तांबुल से आगे ईरान, वहाँ ईरान में एक जगह रात को कोई 3:30 बजे के करीब हमारे ड्राइवर ने बस रोकी पेट्रोल लेने के लिए। तो वहाँ जो सर्दी का ज़माना था, अक्टूबर का महीना था, तो कोई आग जला करके वहाँ सेक रहे थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने कोई कहवा या इस तरह की कोई चीज़ पेश की, इन्होंने बहुत इनकार किया, बहुत वो इसरार करते रहे, वो पेट्रोल डालकर चलने लगे, तो ज़बरदस्ती उन्होंने कहा नहीं नहीं पी लो, वो उन्होंने पी लिया। तो अल्लाह वाला क्या हुआ कि ये वहाँ से निकले, चंद मिनट गाड़ी चली होगी, सब साथी तो गाड़ी चल रही है, सोए हुए हैं, तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब में हज़रत मौलाना हज़रत जी मौलाना साहब साहब दामत बरकातुहुम के दादा जान हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नवरल्लाहु मरकदहु को मैंने देखा। हज़रत तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि अभी देखना क्या होने जा रहा है। बस ये देखा हज़रत को, और उसके बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ कि मुझे उठाकर किसी ने घसीटना चाहा, खींचना चाहा। मैं बस के फ्लोर पर पड़ा हुआ हूँ और ये मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक हाथ काम कर रहा है। वो मुझे जगा रहे हैं कि जल्दी निकलो हमारे साथी, क्योंकि हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने तब मुझे होश आया कि ये हाथ टूटने की वजह से मैं बेहोश हो गया हूँ और बेहोशी से मुझे ये जगा रहे हैं। चंद मिनटों पहले ही किसने इत्तला दी? हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अभी देखना कि क्या होने जा रहा है। कैसा रूहानियत का आलम, कितना प्यारा। कैसे हज़रत शेख कुद्दुस रूह कहाँ कहाँ अपनी अफकार में और भटकते रहते हैं, क्या सोच में इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं। पकड़ लेते थे कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने अपनों से कब खाली। तो इसी तरह जमात वहाँ फंसी हुई है, हज़रत शेख कुद्दुस रूह आलम अरवाह से मुतवज्जे हैं कि अभी वीज़ा मिलेगा। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने जमात निकली हुई है, गुलाम हुसैन ड्राइवर हैं और गुलाम हैदर अमीर जमात हैं, इनके साथ क्या होने जा रहा है? तो इसी जुमले से फरमाया कि अभी देखना क्या होने जा रहा है। कितना ताकतवर ये काम है और इसकी पुष्पनाही कैसी ज़बरदस्त है। चलिए, पुष्पनाही ज़ुबान से निकला नहीं, मुझे तो सिर्फ घड़ी देखने 20 मिनट जी। तो पुष्पनाही कैसी ज़बरदस्त कि हज़रत मुझे फरमा रहे हैं कि अभी देखना क्या होने जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया। तो पुष्पनाही पर चलते हैं अभी कि हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नवरल्लाहु मरकदहु ने एक मरतबा हज़रत शेख कुद्दुस रूह को अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब में चचा जान, हज़रत के अल्फाज हैं कि चचा जान फरमाने लगे कि ख्वाब में मैंने देखा कि मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे तुम चल रहे हो। तो हज़रत ने बीच में चचा जान से अर्ज़ किया कि चचा जान, मैं तो आपके कदम ब कदम पीछे चलने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझसे चला नहीं जाता। तो हज़रत ने फरमाया कि और पूरा ख्वाब तो सुनो, ये मतलब थोड़े ही है कि हज़रत शेख कुद्दुस रूह बहुत ताउन फरमाते थे मेवात के असवार में, दूर दूर असवार में, बहुत तवील ज़माने तक वहाँ निज़ामुद्दीन क़याम भी फरमाते थे, लेकिन हज़रत का जहन इस तरफ गया कि ये मुराद होगा कि मुझे और ज़्यादा मुझसे क़याम की तलब होगी कि मैं ज़्यादा साथ दूँ। तो इसलिए बीच में रुक कर अर्ज़ किया कि मैं आपके पीछे चलने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे चला नहीं आता। तो चचा जान ने फरमाया कि ये मतलब थोड़ी ही है, आगे तो सुनो कि मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारे पीछे हजरत सहारनपुरी चल रहे हैं, बताओ इसकी क्या ताबीर। तो हजरत शेख उदिसलु ने अर्ज किया कि चचा जान आप ताबीर दें, क्या ताबीर इसकी आप फरमाएं, क्या ताबीर हो सकती है इसकी। तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये तबलीगी काम है। मैंने अर्ज किया कि काम, ये काम है, ये काम ही था। अभी मैं अर्ज करूंगा कि काम का लफ्ज़ कहाँ से चला, और सिर्फ यही था, ना तबलीग थी, ना दावत थी, ना जिहाद था, ना सिर्फ काम था, जिससे दुनिया सारी काम करती है। तो ये चचा जान ने फरमाया कि मेरा जो काम है, तो ये इसको उलमा और मशायख दिल से कबूल नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पुष्पनाह तुम हो कि तुम्हारी पुष्पनाही की वजह से ये ज़ुबान खोलते नहीं हैं। दिल से तो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान से इस काम के खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई कलिमात नहीं सुने जाते, इसलिए कि मेरे पुष्पनाह तुम हो। तो जिसको बानी तबलीग अपने पुष्पनाह बताएं, उनका क्या मुकाम। बेटे की तरह शागिर्द सारी किताबें सब कुछ शुरू से पढ़ा चाचायान से, मगर वो अपने ज़ुबान से अपना पुष्पनाह बता रहे हैं। चेबा कजमो जे बहरा रहा है कि उम्मत की कश्ती को मौजों से और तूफानों से, साहिल समंदरी तूफान से क्या डर, कि जैसे या रसूल अल्लाह आप जैसा पुश्तीबान मौजूद है। तो ये कश्ती कभी डावाडोल तो होती है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किनारे पर ही लगेगी इंशाअल्लाह। तो ये हज़रत जी मौलाना इलियास साहब नवरल्लाहु मरकदहु ने हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह को अपना पुष्पनाह बताया, तो वहाँ जमात की तरफ निगाह है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे पहले ख़बर दे रहे हैं, फिर हादसा होता है, फिर जमात के अमीर साहब ज़ख्मी होकर गले में ज़ख्म आए थे, हॉस्पिटल में चंद रोज़ के बाद वफात पाते हैं, और मेरे बराबर में जो अहमद भाई जमाला बैठे हुए थे वो शहीद हो जाते हैं। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे मयाना, तो भाईजान रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि जब तुम्हारा तार मिला, हमने टेलीग्राम किया घर पर, और कहीं कहीं नहीं किया। क्यों? कि हमारे सब कुछ तो थे ही हज़रत शेख नवरल्लाहु मरकदहु, इसलिए हर कोई तो अपने पीर व मुर्शिद को खुतूत में सईदी मौलाई मावाए दारैन क्या और क्या लिखता है। और मेरे हर ख़त में आप देखेंगे कि मैं जब सहारनपुर शुरू में, तो वो जिस तरह लोग लिखते हैं इस तरह मैं लिखता था, लेकिन जब हज़रत के दस्ते मुबारक से लुकमे मुँह में मिलने लगे, तो हमने सोचा कि हमारे अब्बास से उम्र भर में एक लुकमा हमें नहीं मिला। तो यही हमारे अब्बा, और हालांकि उस वक्त हमारे अब्बा जान तो बक़ैद हयात थे, मग़लूबुल हाल थे, दुनिया कर कर फरमा चुके थे, इसको मौकूफ़ नहीं करेंगे अभी। अच्छा, आवाज़ आ रही है इसी से। तो ये क्या कह रहा था मैं, जी हजरत शेख कुद्दुस रूह के यहाँ पहुँचे तो हजरत दस्ते मुबारक से लुकमे दे रहे हैं, तो मैंने उसके बाद के तमाम ख़तों में लिखना शुरू किया। अभी सबसे पहले मैं लिखता मेरे बाप मेरे अब्बा, तो हर ख़त मेरा अभी व सईदी व मौलाई से शुरू होता था और जो ख़त्म होता तो मैंने देखा भाईजान को हर चीज़ में नकल की कोशिश की मैंने। भाईजान अपने ख़त के अखीर में जहाँ लिखते हैं मोहताज दुआ नाचीज़, तो भाईजान इसकी जगह पर लिखते थे सगे आस्तान ए आलिए, सगे आस्ताना के इस आस्ताना और दरबार का कुत्ता। और ये कितना पसंद आया आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाईजान का ये हजरत शेख को अपने पीर को लिखना सगे आस्ताना। और मैंने इसकी नकल में सोचा कि सग तो भाईजान ने लिखा तो मैं लिखूँ गदाए आस्ताना, लेकिन फिर अक्ल व शऊर तो अभी भी नहीं आया। लेकिन बाद में हजरत भाईजान के विसाल के बाद मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैंने अपने आप को इंसान क्यों समझा कि मैं तो इंसान भी नहीं हूँ। आम गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक को भी इंसानियत होती है, उन्हें कोई हुस्न खुल्क होता है, जो अच्छी सिफात होती हैं वो भी मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने क्यों लिखा अपने आप को गदाए आस्ताना के इस आस्ताने का भिखारी फ़कीर मांगने वाला। तो ये भाईजान का सगे आस्ताना इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया कि भाईजान के विसाल से कोई 20 बरस पहले एक बड़ी साले तहज्जुद गुजार हर वक्त अल्लाह अल्लाह की तस्बीह और तहमीद और इबादत में मशहूर रहने वाली एक खातून राबिया बसरिया वक्त उस ज़माने की राबिया बसरिया उसे कह सकते हैं, वो वहाँ लुसाका में थी। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, भाईजान को भेजा, तो भाईजान ने अपनी एक कापी में जिसे वो हर वक्त अपने पास रखते थे उसी में उसको रखा। रोज देखते होंगे रोते होंगे कि उसमें वो खातून देखती है कि भाईजान रहमतुल्लाह अलैह है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत शेख कुद्दुस सिर्रुह है, और जो आप देखते हैं हुकूमतों की तरफ से इंतज़ाम हैं कि कभी कुत्ता जिसने पाल रखा है वो किसी को काट न ले, कोई काबू से बाहर ना हो जाए और किसी को ईज़ा ना पहुंचाए, उसके लिए कानून है कि जंजीर में बांध कर उसको लेकर चलो, बांध कर रखो, अपने हाथ में पकड़े रहो ताकि किसी को तकलीफ न दे। तो वो खातून देखती है कि वो कुत्तों वाली जंजीर भाईजान के हाथ पर बंधी हुई है, हजरत शेख कुद्दुस रूह वही जंजीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में उस जंजीर को लिया। कितना पसंद आया ये सगे आस्ताना, कितना मकबूल हो गया। और जब भाईजान का विसाल होता है तो इत्तेफाक कहिए या मालिक का इंतज़ाम कहिए कि भाईजान ने किताबुल जनाइज पर अपना सबक बंद किया। मुमकिन है कि उसकी हदीस के साथ पढ़ी भी गई हो और अच्छे भले 11 बजे सबक ख़त्म हुआ, भाईजान तशरीफ़ ले गए, घर खाना खाया, सोए, जोहर की नमाज के लिए उठे, नमाज के बाद जोहर से लेकर असर तक मामूल था बिन नज़र तिलावत का, कि और نمازوں میں نفلوں میں تو کئی پارے وہ پڑھتے ہوں گے آخر عمر میں، تو ممکن ہے کہ ایک ایک قرآن روز پڑھتے ہوں، تو یہ عصر سے مغرب، عصر ظہر سے عصر تک بن نظر تلاوت ہو رہی ہے، تو اسی دوران کچھ طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، ویل چیئر منگوائی، ویل چیئر میں گھر پہنچے اور رات کو پوچھتے رہے کہ فجر کی نمازیں ادا فرمائیں، عصر ادا فرمائیں، مغرب ادا فرمائیں، عشاء دیر سے ادا فرمائیں، فجر کی نماز کا وقت پوچھتے رہے کہ وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، جب اذان ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہیں اپنے بیڈ روم میں دو تین ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد چائے معمول کے مطابق پیش کی گئی، آدھی پیالی چائے نوش فرما کر فرمایا کہ مجھے واش روم جانا ہے، واش روم تشریف لے گئے اور پھر فرمایا کہ ویل چیئر لاؤ، باہر سب منتظر ہیں۔ تو سوچنے لگے خدام کہ ابھی تو ہو کا عالم ہے، ابھی سپروائزر کمروں میں طلبا کو جگا رہے ہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی تو باہر تو سناٹا ہے، کون ہے؟ طلبا یا پہنچ چکے ہیں، وہ مسجد میں ہیں، باقی اپنے وضو خانے میں تیاری میں ہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن پوچھ نہیں سکے، ویل چیئر لائی گئی، اور جب ویل چیئر دروازے پر پہنچی اور آسمان نظر آنے لگا تو آسمان کی طرف آنکھیں پھٹی ہوئی، السلام علیکم۔ تو کس کو سلام کیا؟ تو حضرت نے جن کو موزمبک دارالعلوم بنانے کے لیے بھیجا تھا، وہ مولانا صاحب جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، جو 11 بجے بخاری شریف کے سبق میں تھے مولانا ایوب صاحب، وہ اپنے گھر میں بیڈ روم میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں اپنی چارپائی پر، تو کوئی جگا رہا ہے، کسی نے جگایا کہ اٹھو اٹھو، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی وقت وہ ایوب اگرادار خواب میں دیکھ رہے تھے کہ بھائی جان کا قبرہ ہے، جس چارپائی پر بھائی جان کو وصال کے بعد لٹایا گیا وہی چارپائی ہے، اس کے ایک طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک طرف مجھے دیکھا میں بیٹھا ہوں، اور خواب یہ دیکھ چکے، اور ادھر جگایا کسی نے کہ وصال ہو گیا، یہاں پہنچے تو جنازہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندر شیخ نے زنجیر پکڑائی تھی، کیسے قبول ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استقبال کے لیے تشریف لے گئے، جیسے شروع میں سنایا کہ حضرت مولانا اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہیں۔ کتنے؟ 5 منٹ، اچھا 11:45۔ تو دوستو، یہ روحانیت کا عالم بڑا عجیب و غریب عالم، کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ، میں اپنا سنا رہا تھا کہ میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم وہاں ہاسپٹل میں رہے، پھر وہاں حضرت شیخ قدس روح کو ٹیلی گرام بھیجا گیا، حضرت نے آدمی بھیجے حاجی شفیع صاحب پیکارڈ واچ کمپنی دہلی والوں کے پاس، کہ وہاں وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے اس قصے کو وہاں پہنچایا جائے، تو انہوں نے وہاں کے قاہرہ وہاں انکر، یہ ایران کے سفارت خانے کو اطلاع دی، سفارت خانے نے وہاں ہندوستانی سفارت خانے کو اطلاع دی، تو ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے سفیر ہمارے پاس پہنچے، पाकिस्तानी सफ़ीर भी हमारे पास पहुँचेंगे, कुछ साथी भाई यासीन वगैरह पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हजरात थे। जब मैं टूटे हुए हाथ के साथ, एक डॉक्टर थे ग़ुलाम अली दहकान जो उस वक्त वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो उन्होंने इलाज किया और हम लोग पहुँचे। हजरत शेख कुद्दुसी लोगों ने शुरू में ममानत फरमाई कि अभी यहाँ ना आओ, लेकिन मैं हजरत ने फरमाया, एक ख़त में तारीफ फरमाया कि मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूँ लेकिन तुम ज़िद्दी हो, अल्लाह ने तुम में खूबियाँ रखी हैं लेकिन नज़र न लगे उसके लिए उसकी एक मुखालिफ सिफत भी रख दी तुम में, ज़िद्द। तो मैंने एक मरतबा हजरत शेख कुद्दुसी लोगों को इस तरह अरीज़ा लिखा कि हजरत मुझे इस रमज़ान में पहुँचना है, तो हज़रत ने जवाब में तारीफ़ फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया कि तुम्हारा वहाँ मदरसा है, इमामत है बोल्टन में, और ये हजरत मना फरमाते। तो फिर मैंने उसके जवाब में लिखा कि हजरत मैं जब भी आने की आरजू तमन्ना और दरख्वास इजाज़त के लिए पेश करता हूँ तो हजरत मुझे मना फरमा देते हैं, और मैंने अपनी वालदा को 17 बरस से नहीं देखा। हर साल मैं वहाँ हजरत की खिदमत में आने की कोशिश करता हूँ तो हजरत मना फरमा देते हैं। वालदा साहिबा को मैंने 17 बरस से देखा नहीं, अभी साउथ अफ्रीका में है। तो हजरत की खिदमत में जब मैं पहुँचा इस ख़त के बाद वाले सफ़र में चंद हफ्ते के बाद, तो हजरत ने फरमाया आ जा प्यारे, ज़ोर से दबाया और चूम हजरत बोसे ले रहे हैं, फरमाया कि तेरा ख़त मैंने बार बार पढ़ा और पढ़वाया, और यह असर के बाद की मजलिस में भी सारी मजलिस में तेरे असातिज़ा को भी सुनाया कि ये यूसुफ़ क्या लिखता है, अंदर मस्तूरात में मैंने भेजा कि देखो यूसुफ़ क्या लिखता है। तो इस सफ़र में जब टूटे हुए हाथ के साथ पहली मर्तबा में भाग कर गया इंग्लैंड से, तो हजरत की नज़र देखिए, शफ़क़त कोई 50-100 बाप भी नहीं कर सकते इस कदर थी, मगर इस ये शफ़क़त कभी तंबी से रोक नहीं सकी किसी काम में। इतना बड़ा हादसा, टूटा हुआ हाथ है, उसमें तो बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने हजफ की। तो मैं इस टूटे हुए हाथ को लेकर जब हजरत की खिदमत में वहाँ कच्चे घर हाजिर हुआ और मैं फिर यहाँ मेहमान खाने में पहुँच गया कि मैं अभी साल में तो हजरत के यहाँ कच्चे घर में क़याम नहीं कर सकता था कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत वज़ू के लिए, इस्तिंजे के लिए, तो यहाँ हजरत मुफ्ती महमूद साहब दफ्तर वाली मस्जिद में सीढ़ियों पर मुझसे मिले। ये पहली मुलाकात मेरी एक्सीडेंट के बाद। तो हजरत मुफ्ती साहब ने मुआनका फरमाया और हाथ मुसाफे का, मेरा टूटा हुआ हाथ की उंगलियां मुफ्ती साहब के हाथ में, और जाते वक्त जो मैंने लंदन के टिकट के लिए मुफ्ती महमूद साहब से कर्ज लिया था, तो हजरत उसके मुतालिक सलाम, अस्सलामुअलैकुम सलाम, मुआनका ख़त्म हुआ और मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, पहले तो अदा किए नहीं और वापस आ गए। तो जिसे मैंने अपने हालात जो लिखे उसमें लिखा कि हजरत मुफ्ती साहब के इस पठानी हमारे यहाँ डंडा लेकर वो जो हिंदुस्तान में तकसीम से कबल पठान हजरात जगह जगह शहरों में देहातों में बहुत होते थे, जो लोगों को कर्ज की ज़रूरत होती थी पैसे दिया करते थे कर्ज पर, फिर सूद भी चलता होगा खुदा ना खास्ता उसमें, तो वो उस कर्ज की वसूली के लिए वो डंडा लेकर जाते थे सूद की वसूली के लिए, कर्ज की वसूली के लिए बड़ा सारा पठान और डंडा लेकर साथ में, तो बेचारा कहीं से भी इंतज़ाम करके पेश कर देता होगा। तो मैंने उसमें लिखा कि पठानी मुतालिबे पर मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर बाद में पता चला कि हज़रत शेख उदी सिंघु ने मुफ्ती साहब को मामूर फरमाया था कि पहली मुलाकात पर सलाम के बाद खैरियत पूछने से पहले अपनी उस कर्ज़ का मुतालबा करो इससे। तो हज़रत ने मुस्तरबों को मुतालबा फरमाया, कैसी शफ़क़त। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत शेख उदी सिंघु को हम सब की तरफ से बेहद जज़ाए खैर अता फरमाएँ। तो ये दोस्तों ये काम है जिसमें आप लगे हुए हैं कि हज़रत मौलाना शाह इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में हैं, ठान ली दिल में और इरादा फरमा लिया कि यहाँ रहना है। तो मैंने अर्ज़ किया कि करोड़ों उम्मती इस वक्त हुए ज़मीन पर हैं, हर एक के कल्ब की तरफ, क्योंकि वहाँ से खुली हुई है हमारी बन है, हमने बन कर रखा है, काश के हम खोल लें, हम खोल लें, दुआएं करो रो खुल जाए। जैसे हजरत मुफ्ती साहब का मैंने अर्ज़ किया कि मुफ्ती साहब जब इंग्लैंड तशरीफ लाए तो फरमाया कि हजरत ने फरमाया कि मेरी आंखों से यूसुफ़ का दारुल देखकर आओ। तो फरमाया कि मैंने जब मैं मदीना मुनव्वरा से इस सफ़र के लिए चला हूँ तो मैंने रोज़े अक़दस पर यह शेर पेश किए, उआदिउकुम वअलिमुकुम बिवजदी वक़ल्बी इंदकुम वल्जिस्मु इंदी वला क़स्दी उफ़ारिकुकुम वलाकिन क़ज़ाउल्लाह यग़लिबु कुल्ल अब्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब फरमाकर मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे रुख़सत हो रहा हूँ लेकिन मेरे दिल का वजदान, मेरे महब्बत, मेरा इश्क किस दर्जे का है, मैं उसके मुतालिक ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वला कस्दी उफ़ारिकुकुम वलाकिन क़ज़ाउल्लाह यग़लिबु कुल्ल अब्दी, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क़ज़ा और क़दर के फ़ैसले हैं। तो जिस तरह मालिक का किसी के मुतालिक फ़ैसला है उसी तरह उसे जाना पड़ता है, इसलिए क़ज़ा और क़दर के फ़ैसले के मुताबिक मुझे भी यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मैं पेश करके आया वहाँ से। तो इसी तरह हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब दिल में ठान ली कि मुझे यहाँ रहना है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं हज़रत मौलाना इलियास साहब को कि अभी हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ आपसे काम लिया जाएगा। तो अब सुबह उठ कर के हज़रत मौलाना इलियास साहब, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी क़ुद्दस सिर्रहू के भाईजान हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब को ख़्वाब सुना रहे हैं कि मैंने ये ख़्वाब देखा, वहाँ से तो हुक्म हुआ मैं तो रहे यहाँ मुस्तकिल क़याम का मैंने इरादा नियत कर ली थी, फिर मैं जाओ। इसमें तो काम के लिए मुझे कहा गया, काम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काम न दावत। वरना इस लफ्ज़ की तशरीह में कहाँ से कहाँ गुमराह हो गए लोग, दावत दावत अपने मकाम मनसब को क्या से क्या समझ लिया, इसी काम समझो कि हम तो मजदूर हैं, लगाए गए हैं इस काम पर, कोई दावा न करो न तबलीग का न दावत का। फिर अपनी दावत को अंबिया के साथ जोड़ा गया कि फुला नबी से दावत के समझने में गलती हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान आयात के समझने में गलती हुई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये सब तबाही आई इसी से कि इसकी इब्तिदा को समझो। कैसे बना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, काम आपसे काम लिया जाए। अब रो रहे हैं, जाने का हुक्म हुआ क्यों नहीं रोएंगे, ज़ारो कतार रो रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं मैं क्या काम कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं तो बोल नहीं सकता, तलाकत के साथ रुक जाता हूँ, रुक रुक कर बोलता हूँ। फरमाया ये तो लिया जाएगा, फरमाया तुम्हें थोड़े ही कहा कि तुम करो, तो लेने वाले लेंगे काम। फिर आलम इंसानियत ने सारी दुनिया में देखा कि कैसा काम लिया गया, कैसा काम लिया गया। दोस्तों अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों के इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, हमारे इस मिलने बैठने को कबूल फरमाए, सारे खलफशार और फितनों को ख़त्म फरमाए, सबको मालिक की तरफ रुजू की तौफीक अता फरमाए। दुआ करा दें। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم سهل الله كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.